ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित और समावेशी विकास के लिए ग्लोबल साउथ के देशों की सहायता के लिए व्यापक वैश्विक विकास समझौते की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में मौजूदा विश्व माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय था सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वैश्विक विकास प्रशासन में ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका हो। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्रियों के सत्र में श्रीमती सीतारामन ने सामूहिक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सभी देशों से निरंतर सहयोग की मांग की। उन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान आने वाली गंभीर चुनौती की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। श्री सिंह चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। ये केंद्र समुद्री जल प्रदूषण से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण केंद्र है। इस केंद्र से खासकर तटवर्ती इलाकों में समुद्री जल में तेल और रसायन रिसाव होने पर निपटने में मदद मिलेगी। श्री सिंह पुडुचेरी में तटरक्षक एयर एनक्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। वे तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जन्मशती पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। वे कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल अहिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री की यात्रा से दोनों देशों को राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, राजनयिक और जनसंपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा का अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श करेंगे और पश्चिम तथा दक्षिण एशिया की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत नेपाल के साथ नियमित वार्ता करता है और श्री देउबा की यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने का अवसर मिलेगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार श्री देउबा विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के साथ बैठकें करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने वर्ष 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्ति के लिए विभाग के उपायों की समीक्षा की है। केंद्र सरकार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात सहित अन्य राज्यों को इन रोगों से मुक्त क्षेत्र बनाना चाहती है। श्री सिंह ने कहा कि पशुधन देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खुरपका और मुंहपका के कारण प्रतिवर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इन पर नियंत्रण से दुग्ध उत्पादन पर असर पड़ेगा। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाया जा सके। संघ की मांग है कि अस्पतालों का सुरक्षा व्यवस्था हवाई अड्डे जैसी होनी चाहिए। 15 और 17 वर्ष से कम उम्र के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए चीन में मंगलवार से शुरू हो रही चैंपियनशिप के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। चीन में ही पिछले वर्ष हुई इस चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। भारत अगले साल जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।